ओम शांति। नम आश्रम के संदर्वेला में सब फरिश्ते की तरह उड़ रहे थे। अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1963 में डिग्री लॉ की पढ़ाई पूरी की और आपने 1967 में ये ASM M.Tech में मास्टर की डिग्री का अनुभव प्राप्त किया। 1967 में ONGC में आप सर्विस करते रहे। 28 वर्ष तक ONGC के लिए आप लाफ्टर जैसे आसाम, गुजरात, उत्तराखंड आदि में कार्य करते रहे। 1996 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। 1962 में जब आपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाबा के संपर्क में आए, तब से लेकर के आप सक्रिय सेवाओं से जुड़े रहे। साथ ही साथ बिहार, आसाम व गुजरात में बाबा के कई सेंटर्स खोलने के भ्राताजी निमित्त रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवाओं की जिम्मेवारी संभालते हुए आप राज्ययोग शिक्षा शोध संस्थान के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। आप संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमी के कोऑर्डिनेटर पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और त्रिमासिक जो इंजीनियर साइंटिस्ट विंग का स्वा करके एक पत्रिका निकलती है उसके भी आप संपादक हैं। 7 बार पर्यावरण प्रदूषण जागृति अभियान आपने सफलतापूर्वक आयोजन किया है। भारत के कई राज्य में मेगा प्रोग्राम्स भी आपने दिशा निर्देश में हुए हैं। भारत के कई राज्यों में विंग की ओर से 9 आपदा प्रबंधन अभियानों का आपने सुचारू रूप से आयोजन किया है। 1985 से अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान निदर्शन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पदयात्राएं निकली थी। उस समय आप यूथ विंग के सचिव पद पर थे। बहुत सी सेवाएं की, अपना समय श्वास संकल्प बाबा की सेवा में आपने सफल किया। साथ ही साथ विदेश में भी आपने बाबा की सेवा जो है वो करते रहते हैं और आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। 1982 में भारत सरकार के HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस के द्वारा US में भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया और वर्ष 2013 में राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ग्रीन आइरियल अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के ध्वनि बाबा ने जिनको अपने सिरताज बनाकर रखा है, ऐसे मोहन सिंगल भाई जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मोहन भाई, हम सब ब्रांडपुर सब जोन के भिन्न भिन्न सेंटर से पधारे हुए भाई बहन हैं। सुधा दीदी जी ने बहुत सुंदर फुलवारी को सींचा है और अभी मंगला बहन जी और सभी बहनें बहुत अच्छी सेवाएं कर रही है और उन्नति कर रहे हैं सेवाओं में। तो मैं निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, प्रकृति पर ही विजय इस विषय पर हम सभी को लाभान्वित कराएंगे भ्राता मोहन सिंगल जी।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति की ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ के प्रारंभ में। साकार बाबा सब ब्रह्मावत्सों के साथ करते थे। अंदर एक गहरी श्वास ले करके और फिर धीरे धीरे उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओम शांति जहां पर भी विजय की बात आती है मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उमंग उत्साह में भर जाता है, आनंद और खुशी में अभिवृद्धि हो जाती है, क्योंकि विजय जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा ने कहा है। और इसीलिए हम बहुत बार अनेक बार विजयी बने हैं और अब सिर्फ उसी विजय के पार्ट को फिर से रिपीट करना है। बस पहली बार कोई कार्य किया जाए तो मुश्किल अनुभव होता है, लेकिन अनेक बार के हम कलप कलप के विजयी आत्मा हैं, इसलिए आज हम सब लोग प्रकृति पर विजय इस पर आपस में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा अंतिम पेपर है। प्रकृति शब्द के बाबा ने कितने अर्थ बताए हैं? दो अर्थ बताए हैं विशेष करके। एक प्रकृति अर्थात ये जो पांच तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इन तत्वों से ही मिलकर हमारा ये शरीर भी बना है, और यही पांचों तत्व पूरे सब जगह व्याप्त है। और दूसरा प्रकृति का अर्थ है हमारा स्वभाव, ह्यूमन नेचर। हम कह देते हैं भाई मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। तो इसलिए प्रकृति पर विजय ये हमारा जो अंतिम पेपर है, अपने स्वभाव संस्कारों पर विजय प्राप्त करना, ये एक सूक्ष्म पेपर है जो कि हम सब लोग रोज पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, ज्ञान योग धारणा के द्वारा, सेवा के द्वारा। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बाहर के ये जो पांच तत्व हैं इन पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि गायन है, क्या गायन है? अंतमति सोगति का गायन। तो जब हम आत्माएं अपना ये शरीर छोड़ेंगी, उस अंतिम सेकंड में जैसी हमारी विचारधारा होगी, जैसी हमारी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, उसी अनुसार ही हमारी गति होगी, और उस गति के आधार पर ही कल्प कल्प हमारा पद निश्चित होगा। इसीलिए ये जो एक अंतमति सो गति के आधार पर जब ये शरीर छोड़ना ही है, तो हमें ये सुनिश्चित करना है अंत में हमारी गति बहुत सुंदर हो, कहीं पर भी और बुद्धि ना अटके, जो बाबा चाहता है एक बाबा की तरफ ही बुद्धि रहे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी बुद्धि का आकर्षण ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि बाबा ने यह भी बताया है कि जब शरीर छोड़ते हैं अंत में, बाबा कुछ दिन पहले ही बाबा की मुरली आई थी, ब्रह्मा बाबा के अंतिम दिन का वर्णन याद है, जो रिवाइज कोर्स की मुरली चल रही थी, शायद एक मास के अंदर की ही बात है, बाबा ने बताया था अव्यक्त रिवाइज कोर्स की मुरली में कि कैसे अंत समय में बस युद्ध चल रही थी ब्रह्मा बाबा के अंदर भी। एक तरफ कर्म भोग की युद्ध, दूसरी तरफ कर्म भोग की किसके साथ? योग बल के साथ। और दोनों में बहुत युद्ध थी, शरीर जो था आत्मा बिल्कुल जैसे अंतिम हिसाब किताब चुकतू कर रही थी, बहुत पेन भी था, दर्द भी था, और दूसरी तरफ योग बल भी अपनी चरम सीमा पर था। और धीरे 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 क्या बताया था बाबा ने मुरली में, दर्द जो है वो धीरे 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 मंदा पड़ता गया, कम पड़ता गया, योग बल बढ़ता गया, अंतिम रीति से विजय प्राप्त करी और आत्मा बस एक क्षण में शरीर छोड़ करके उड़ करके बाबा की गोदी में आ गई। तो ये हम सभी को भी फेस करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, हम सभी ब्रह्मावत्स है, तो इसीलिए उस अंतिम क्षण में के लिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो विजय हो, उस समय हमें और कहीं पर भी कोई भी याद ना आए किसी भी रीति से। किसका गायन है, इच्छा मृत्यु का, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह का गायन है ना। तो ऐसे ही हम सबको भी भीष्म पितामह ब्रह्मा बाबा की तरह ही अपनी इच्छा से जैसे शरीर हम त्यागें, तब तो ब्यूटी है। यदि दुनिया वालों की तरह हमने भी शरीर छोड़ दिया, अंत समय में बाबा ने कहा है पांचों तत्व अपना बहुत गहरा जलवा दिखाएंगे, अति हलचल होगी बाहर, लेकिन आप बच्चों में क्या हो, अति अचल। बाहर अति हलचल हो, अंदर हम सब अति अचल हो, और उस समय ऐसी स्थिति में हम देह त्याग करके चले, कोई भी बाहर की हलचल हमें परेशान न करे। अक्सर करके लोग तो मधुबन रहते हैं तो देखते हैं, कई बार ये आता है कि कई अपने भाई बहने शरीर छोड़ते हैं और फिर यहाँ जब भोग लगाया जाता है उनका, तो वो बताते हैं, अरे भाई मैं बहुत समय से सोच रहा था ये कार्य मुझे करना है, यज्ञ का ये तन मन धन समय शक्ति ये लगानी है, ऐसा करना है, लेकिन मैं सोचता रहा हाँ कल करूंगा कल करूंगा, और ऐसा करते करते कैसे समय आ गया, कब शरीर छोड़ दिया, और अब मुझे बहुत बहुत उसकी महसूसता हो रही है कि मैं अपना ये सफल नहीं कर सका। इसीलिए एक तो हम पहले से ही ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा कोई भी काम पेंडिंग ना हो, रहा हुआ ना हो, मानो विल करनी है। हाँ, क्योंकि कई आते हैं यहाँ पर और उनका पूरा अगर लौकिक रीति से सफल नहीं हो पाता धन, तो क्या होता है, फिर दूसरे जगह चला जाता है, कहीं बैंकों में कहीं लौकिक संबंधी ले जाते हैं आदि आदि, उन आत्माओं को बहुत कष्ट होता है। एक तो हमें ये देखते चलना है कि हम कोई भी काम हमारा अधूरा न रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा समेटते जा रहे थे। 1962 में हम बाबा के संपर्क में आए, पहली बार बाबा से मिले, और उसके बाद तो 15-20 बार साकार बाबा से मिले होंगे। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा कौन सा रहा कि अंतिम दिन जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो उससे एक दिन पहले ही हम यहाँ पर 17 जनवरी की सुबह आ गए थे, और बाबा ने जैसे बुला लिया और हमें अपनी आंखों से बाबा की कर्मातीत अवस्था को देखने का मौका मिला। तो उस बात को एक तो हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि वही कर्मातीत अवस्था को हमें सबको प्राप्त करना ही है, और उसके आधार पर ही हम सब फरिश्ता स्वरूप स्थिति जो बाबा कहता है उसको प्राप्त करके फिर सब चलेंगे। तो बाबा से पहले जब हम लोग मिला करते थे, बाबा कहते थे आओ बच्चे, हाँ अपना जीवन कहानी लिख करके दो, हम लोग कुछ कागजों में लिख करके देते थे। बस बाबा की नज़र तो ऐसी थी, हमें याद है हमने 20-25 पेज में लिख करके दी, बस बाबा ने पलटा और ये हाँ बच्चे ठीक है, बस कोई मेजर विक्रम तो नहीं किया है ना, और ये नहीं, बस ठीक है बच्चे, और इतनी तीखी नजर थी, बाबा की नजर ही वहां पर जाती थी जहां पर कोई करेक्शन देने की जरूरत होती थी। तो ऐसे उसमें क्या समय भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, ऐसे हमें भी देखना है एक एक पल, एक एक सेकंड हमें कैसे बचाना है। तो पहले बाबा समय देते थे और मिला करते थे, यहां पर मिलते थे झोपड़ी में या अपने कमरे में या हिस्ट्री हॉल में, तीन जगह जैसे ही होते थे। अगर दो तीन व्यक्ति होते थे कुछ तो अपने कमरे में भी मिल लेते थे, तब बाबा का कमरा इतना बड़ा नहीं था, बस आगे जहां तक बेड पड़ा हुआ है उतना ही छोटा सा कमरा था और पीछे से उसका रास्ता था, तो वहां बाबा मिला करते थे। नीचे जहां बाबा की गद्दी पड़ी होती है वहां पर बाबा बैठते थे, हम लोग सामने बैठ जाया करते थे और बाबा से मिलते थे साकार में। और थोड़ी बड़ी पार्टी पांच छह होते थे, सात आठ तो यहाँ पर झोपड़ी में मिला करते थे, और उस समय के हिसाब से तो 12-10-12 की पार्टी बहुत बड़ी मानी जाती थी, 12-15 तो होते थे, तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। इस रीति से बाबा समय देते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा व्यक्त होते जा रहे थे सब तरफ समेटते जा रहे थे, और बाबा इतना समेटते जा रहे थे जिससे कि अंत समय में कहीं पर भी बुद्धि अटके नहीं। हमें याद है कि जब ममा ने शरीर छोड़ा था 65 में ममा ने शरीर छोड़ा था, तो जब ममा ऊपर गई तो शिव बाबा से, बाप दादा से रू रूहान चल रही थी, बाबा ने पूछा ममा कर्मातीत अवस्था का स्थिति क्या होती है, उसका अनुभव किया तुमने? तो ममा ने शांत रही, चुप रही, और फिर ममा ने कहा नहीं बाबा, क्या स्थिति, कर्मातीत स्थिति कैसी होती है? तो अच्छा बच्ची जाओ, और अभी तुम्हारा शरीर वहां हिस्ट्री हॉल में रखा है, या वो तो उस स्थिति का अनुभव करके आओ। तो ममा ने बताया कि मैं नीचे आई थी, बाबा ने भेजा, लेकिन शरीर चूंकि बिल्कुल ठंडा हो गया था, कोई भी उसमें चुरपुर नहीं हुई, कोई भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं, और मैं उस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकी। वो जाके बाबा को बताया उन्होंने, तो बाबा ने कहा बच्ची देखो, ये अवस्था का अनुभव नहीं किया ना, अब तुम्हें नए शरीर में जब जाओगी और उसमें पुरुषार्थ करके उसमें तुम्हें इस स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। बस बाबा ने और कोई राज नहीं खोला। जनरल कि हम सबको भी जब शरीर छोड़ना है उससे कुछ समय पहले जैसे कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, ये प्रकृति के पांच तत्वों पर विजय उसका अनुभव करना है, तो वो जैसे अनुभव करना है, तो उसके लिए अभी से जो पेपर होता है उसके लिए तैयारी करते हैं ना। कोई भी घर में इवेंट होता है, मेला है, प्रदर्शनी है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, उद्घाटन है, बहुत पहले से तैयारी करते हैं, तो इस अंतिम पेपर की भी हमें बहुत पहले से तैयारी करनी है। अब वो समय चल रहा है संकल्प सिद्धि का समय, तो क्या तैयारी करनी है? तो बाबा से तो पहले बाबा समय देते थे, फिर हमने देखा मिडिल में 65, 66, 67 होता, 1966-67 में जब बाबा से मिलते थे तो बस बहुत थोड़ा समय देते थे बाबा, हाँ बच्चे क्या सेवा है, थोड़ा बताते थे, बाबा कहते थे हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। लेकिन मैं अंतिम दो दिन का अनुभव बताता हूँ कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को बाबा से हम कई बार मिले, लगभग 7-8 बार मिले, क्योंकि उन दिनों ज्यादा पार्टी तो कोई थी नहीं, बाबा के सम्मुख जाते थे हमेशा की तरह, बाबा को सेवा समाचार सुनाएंगे, पुरुषार्थ की बात सुनाएंगे, क्या से चल रहा है वो प्लान है वो सुनाएंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ऐसे थोड़ी सी दृष्टि देते थे और कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ये बताने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, यानी कि हमें एक शब्द भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बाबा मन का हाल जान जाते थे और तुरंत उसका समाधान भी करते। ये कौन सी स्थिति है? मन जीते जगत जीत की स्थिति। यह इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। हमारे मन में जब अपनी कोई भी इच्छा नहीं होगी तो हम दूसरे के मन का हाल भी जान सकेंगे और मन का हाल जानेंगे तो हम उसकी इच्छा को पूर्ण भी कर सकेंगे। अंत में हम सबका यही पार्ट चलना है जो बाबा के सम्मुख, ये पार्ट तो हमने देखा यहाँ पर। और जब जो ब्रह्मा बाबा के सम्मुख पार्ट चला, हम सब लोग अपनी अपनी रचना के ब्रह्मा हैं। जो सेवा कर रहे हैं उन सब के हम ही ब्रह्मा हैं। मास्टर ब्रह्मा हमारे द्वारा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करेंगे, जो भी आत्माएं आएंगी अंत समय। इसीलिए वो अनुभव करने और कराने के लिए एक तो हमें ये स्थिति बनानी है कि इच्छा मात्रम अविद्या, हमारे मन में कोई इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण, संकल्पों पर पूरा नियंत्रण। अभी कुछ महीने पहले है, गुलजार दादी जी बता रहे थे कि बाबा ने कहा बच्चों को सर्टिफिकेट दिया कि अब बच्चों में विकारी विचार तो नहीं चलते हैं लेकिन व्यर्थ विचार अभी भी चलते हैं, उसमें बच्चों की काफी एनर्जी वेस्ट थॉट्स के रूप में चली जाती है। तो अभी व्यर्थ विचारों को भी ऐसा समझना चाहिए जैसे कि विकारी विचार। तो ये वेस्ट थॉट्स का भी समय नहीं है। तो ये अपने को समझ के जैसे कोई भी विचार आए कैसे उसे कंट्रोल करें, जानते तो हैं व्यर्थ नहीं होना चाहिए लेकिन कैसे उसे रोका जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले 1936-37 में जब ज्ञान हुआ तो बाबा ने भी ये अनुभव किया कि मन भाग जाता है, बैठते हैं बाबा को याद करने लेकिन कभी बिजनेस में, कभी बच्चों में, कभी जहां पर बुद्धि का योग होता है पर मन भाग जाता है। हम सबका भी ये अनुभव है। तो क्या करें इसके लिए? मन भाग जाता है, कैसे उसे रोका जाए? हम चाहते हैं मन को पकड़ के लाते हैं, फिर थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में फिर मन भाग जाएगा। तो बाबा ने बताया, उसका बताया हुआ है, हम सब जानते हैं कि मन को बाबा ने क्या किया, ऑर्डर किया। मन को बाबा ने पत्र लिखा, हम सबको बाबा के वो कॉपी दी गई थी। बाबा ने मन का जो पत्र लिखा है, मन को बुद्धि को क्या पत्र लिखा बाबा ने, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है। मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे वश में होना चाहिए, अंडर में होना चाहिए मंत्री को, राजा के, लेकिन तू बलशाली हो गया और तुमने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। बहुत समय तक तेरे कहने पर मैं चलता रहा, तेरे पीछे पीछे भागता रहा, जो तू कहता रहा मैं करता रहा। मन तू भागता रहा, मुझे भगाता रहा, लेकिन अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी शक्ति में, स्वस्थिति में स्थित हो गया, स्थित हो रहा हूं, और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा क्योंकि मैं राजा हूं और तू मंत्री है। तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, मन तुम दोनों ने मिलकर, मन और बुद्धि ने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। मैं भी तुम्हारे कहने पर भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं, हे बुद्धि, अब तुझे मेरे नियंत्रण में रहना होगा क्योंकि मैं आत्मा राजा अब तुझे ये ऑर्डर करता हूं कि मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर। तो बाबा ने जब ये दृढ़ निश्चय किया, और उसके लिए क्या करना होता है, लौकिक में हम सभी अनुभवी है, मानो कोई प्रधानमंत्री भी है, मिनिस्टर है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है बहुत बड़ा, जब तक वो अपनी सीट पर है सब उसका कहना मानते हैं, और जब उसका ट्रांसफर हो जाता है या इलेक्शन हार गया या पद पर सीट पर नहीं रहा, कोई उसका कहना नहीं मानता। ऐसे ही हम अपनी स्वमान की सीट पर स्थित हुए बिना अगर हम कोई शक्ति को ऑर्डर करेंगे, वो शक्ति हमारा कहना नहीं मानेगी कभी। तो पहले हमें जो बाबा ने इतने स्वमान दिए हैं, उन स्वमान में अपने को स्थित करके और फिर ऑर्डर करना पड़ेगा मन को कि बस मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा आपने ही मुझे कल्प पहले विजयमाला का मणका बनाया था, अब मैं फिर से विजयी माला का मणका बन रही हूं, मैं आत्मा बाबा बस अब आपके पास संपूर्ण होकर आई की आई, मैं आपका मस्तक बड़ी हूं बाबा, दिल तक मशीन आत्मा हूं, अब आपको मेरे कहने पर जो मुझे कल्प पहले आपने विजयी बनाया था, अब मैं फिर से विजयी बन रही हूं, आप बनाओ। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मन जो है ना, हमारा मन ना, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक है सब कॉन्शियस माइंड, जिसे हम लोग अपनी चालू भाषा में वृत्ति भी कह देते हैं। इसीलिए कॉन्शियस माइंड तो हम जब जागृत अवस्था में सुन रहे हैं, ये अपना कार्य करता है, लेकिन इससे कई कई गुना पावरफुल हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, वृत्ति होती है, वो पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के आधार पर भी वो वृत्ति कार्य करती है। इसीलिए एक हमें ये देखना है किस प्रकार से उस वृत्ति को हम इतना मजबूत करने, सब कॉन्शियस माइंड जो है, जो हम पॉजिटिव ऑर्डर देते हैं उसी को ही वो स्वीकार करता है, बाबा आपको मुझे ये शक्ति देनी है, मुझे ये शक्तिशाली बनाओ, ये नहीं, मैं उस शक्ति में स्थित हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मन सब कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव अफर्मेशंस को स्वीकार करता है, जो कि हम लोग यही तो करते हैं, जो योग शिविर होता है उसमें अपने को यही तो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, और इस प्रकार से जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं उनको जब हम रिपीट करते हैं, करते 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 वृत्ति के अंदर इतना गहरा घुस जाए कि हम सो रहे हों, जग रहे हों, सब कॉन्शियस हों, अर्ध चेतन अवस्था में हो, तुरंत वृत्ति की वो पॉजिटिव बातें हमें याद आ जाए। तो इस रीति से एक तो हमें ये करना है, मन को मन जीते जगत जी। तो बाबा का हमने क्या देखा अंतिम दो दिनों में, एक तो ये देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे, और क्यों ऐसा होता था, क्योंकि बाबा ने ना जो लेसन है हमारे ज्ञान के, केवल उन्हें सुना नहीं, पढ़ा नहीं, बल्कि उस पर अमल करके वैसा स्वरूप बन गए बाबा। हमें याद है हम लोग जब बाबा से मिलते थे तो क्या होता था, बस कई भी बाबा मिलते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे और हम बस चुंबक की तरह खींचते हुए बस बाबा की भाव में चले जाते थे। तो ये तो फिजिकल बात रही, लेकिन ब्यूटी क्या होती थी, नए होते थे, अव्यक्त बिंदु स्वरूप स्थिति का मालूम भी नहीं होता था, लेकिन बाबा में इतनी पावर थी कि बस जैसे ही बाबा का टच हुआ या बाबा की दूर से, अंतिम एक दो वर्ष में तो बाबा ऐसे फिजिकली ज्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि डॉक्टर वगैरह ने बोला हुआ था कोई इन्फेक्शन वगैरह न लगे, तो इस कारण से उसमें क्या होता था कि बाबा दूर से दृष्टि देते थे और जैसे ही दृष्टि दी हम सब विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, इतनी आंखों में, क्योंकि बाबा को ये अभ्यास बाबा ने इतना पक्का कर लिया था लिख लिख के, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये करके कि जिसको भी बाबा दृष्टि देते थे ये आत्मा है, जो बाबा ने आज भी मुरली बोला ना, चमकता हुआ सितारा देखें, तो बस, और वो आत्मा विदेही हो जाती थी। फिर क्या होता था, धीरे धीरे बाबा ऐसे थपथपी देते, आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे। तो फिर हम जैसे देह में आने का पुरुषार्थ करते थे, और फिर कोई देह से आत्मा अलग नहीं हो जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे देह का भान विड्रॉन हो जाता है, और उसके बाद बाबा मुंह में टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, हम लोग जवाब देते थे, तो एक के बाद एक वो सारे पार्टी वाले मिला करते थे। तो एक ये हमें भी देखना है बाबा की तरह कि हम लोग भी केवल कहने मात्र तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसा बाबा ने कहा अब अनुभव कराने का समय है। लोगों ने बहुत सुन लिया भक्ति मार्ग में इधर उधर, अब बस एक सेकंड का भी अगर अनुभव हो गया उन्हें, वो अनुभव उन्हें बहुत समय तक इस शक्ति की अनुभूति कराता रहेगा। इसलिए तो बाबा ने और अंतिम दो दिन में क्या किया, 18 तारीख की सुबह बाबा यहाँ पर ना क्लास कराने आए जैसे रेगुलर रीति से, लेकिन उस दिन बाबा ने सिर्फ योग ही कराया। 18 जनवरी 1969 की सुबह उस दिन मुरली नहीं चलाई, बच्चों में शक्ति भरी। फिर बाबा ने बस बाहर यीशु दादी को बोला, आज जितने भी पत्र लिखने के जवाब देने हो वो सब आज बाबा से जवाब लिखवा दो। पहले इंटरनेट ईमेल वगैरह तो होता नहीं था, तो इसलिए यीशु दादी ने जितने भी पेंडिंग लेटर थे उन सबके जवाब लिखवा दिए। और वो फिर जो जो बाबा के पेंडिंग वर्क थे ना बचे हुए, वो बचे हुए वर्क भी उस दिन बाबा ने पूरे किए। जो नक्की लेक पर हमारा म्यूजियम है, वहां पर वो बिल्डिंग लेनी बाकी थी, कई दिनों का पेंडिंग पड़ा था, तो बाबा ने उस दिन भी उसे क्लियर किया, हाँ उस बिल्डिंग को ले लिया जाए और वहां पर सेवा का स्थान बनाया जाए। ऐसे करके रोज रात्रि क्लास होती है रात को 9:45 लगभग, लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग 6:30-7:45 ही जो जमुना प्रसाद भाई है उनको बुला के बोला कि भाई आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बोलो कि भोजन करके सब 7:00 तक क्लास में आ जाए, 7:30। तो ये बाबा ने पहले ही बता दिया, बाबा को आभास हो गया था कि बस आज ये मेरा बच्चों के साथ अंतिम मिलन। तो ऐसा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी इवेंट उस दिन के अगर हम देखें तो उनसे बिल्कुल क्लियर प्रतीत होता है ये बाबा का जैसे अंतिम अनुभूति थी। ऐसे ही हमें भी जब हम शरीर छोड़ने वाले हों, अंतिम कर्मातीत अवस्था पा करने वाले हों, ऐसा अनुभव होना चाहिए अब हम इस शरीर से सारे हिसाब किताब चुकतू करके अब हम बाबा आपके पास आए कि आए। तो उस दिन बाबा क्लास में जल्दी आए, सबके साथ बाबा ने मतलब योग कराया। वैसे बाबा को कभी कभी कई बार खांसी आती थी, लेकिन उस दिन की मुरली सुनो, एक बार भी खांसी बाबा को नहीं आई, एक बार भी। और वो इस बात का प्रतीक है कि योग बल ने कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। ऐसे हमें भी देखना है अंतिम समय तक बस हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाए। बाबा क्लास के बाद आए बाहर और बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बाबा गए अपने कमरे में, हाथ में हाथ दादी जी के बाबा ने शरीर छोड़ा। और उसी दिन का अनुभव बताया बाबा ने जो मैंने शुरू में बताया, बहुत योग बल और भोग बल की युद्ध चल रही थी और कैसे अंत में योग बल ने विजय प्राप्त की, वो एक मास के अंदर की ही मुरली है, वही बाबा ने उसका वर्णन किया। लेकिन प्रकृति पर विजय का प्रतीक हमें उसके बाद दिखा कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, 18 जनवरी रात शरीर भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 की सुबह के बाद दोपहर के बाद अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई भी उसमें दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया बाबा को, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन वैसा ही शरीर चमकता रहा, गोरा रहा, काला बिल्कुल नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात, उसमें अकड़न भी बहुत नहीं थी, थोड़ी सी थी, लेकिन जब स्नान कराया बाबा को और शांति स्तंभ में जो अग्नि संस्कार किया गया, बिल्कुल भी शरीर में जैसे अकड़न नहीं। ये है पांच तत्वों पर विजय का प्रतीक। तो हम सब भी चाहते हैं हमारी भी इसी तरीके से पांच तत्वों पर विजय हो। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें ये तत्वों को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। ये जो तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये तत्व को मित्र, और मित्र मित्र की रक्षा करता है इमरजेंसी में, समय पर मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता। तो ये जल है, अग्नि है, पृथ्वी का अर्थक्वेक आएंगे, बहुत सारे अर्थक्वेक आएंगे, बादल फटेंगे, कोई फ्लड आएगा, सुनामी होगी, बहुत तत्वों की उछल होगी, लेकिन अगर इन तत्वों को हमने मित्र बनाया होगा तो ये समय पर हमारी एकदम रक्षा करेंगे। बस ऐसा लास्ट मोमेंट टचिंग होगी। इसके अनेक अनेक उदाहरण हैं, वो अभी उतना समय तो डिटेल में जाने का नहीं है, लेकिन उससे हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। मानो हमें जल को मित्र बनाना है, कोई ऐसा पुर आए, बाढ़ आए और उसके कारण हमारी मृत्यु हो, शरीर छूटे, उसका क्या करेंगे? उससे जल का जो संस्कार है वो संस्कार हमें धारण करने पड़ेंगे। जल का कौन सा संस्कार है? शीतलता। और शीतलता के साथ साथ जल का एक संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट का। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो गया, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में, थाली में, किसमें लोगे? इतना फ्लेक्सिबल है, हर एक से एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चलना है। मैं ये ना कहूं कि इनके साथ तो एडजस्ट होना बहुत आसान है, कर सकते हैं, उनके साथ एडजस्ट होके चलना बहुत मुश्किल है। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे संस्कार इतने कोमल हो, निर्मल हो, कठोर संस्कार ना हो कि हम एडजस्ट होके ना चल सके। एक तो अगर हमने ये एडजस्टमेंट का संस्कार धारण किया होगा। और जल का दूसरा गुण क्या है? जल जो है सदा बढ़ता रहता है आगे। जल के रास्ते में ना बहुत बड़ा पत्थर भी आएगा, रुकावट आएगा, जल इंतजार नहीं करेगा कि ये पत्थर हटे या इंतजार, वो अपना घूम घाम के रास्ता बना के आगे बढ़ता रहेगा मंजिल की तरह। ऐसे ही हमारे सामने विघ्न आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हम अपना रास्ता ढूंढ के चले जाएं, ऊपर से क्रॉस करके चले जाएं। कैसे? तो क्या होगा, जल जो बहता रहता है ना वो फ्रेश माना जाता है, ताजा। और जहां जल स्टैग्नेट हो गया, रुक गया, वहां क्या होगा? मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, बदबू, वो सब पैदा हो जाएगी। तो ये ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बदले की भावना, निगेटिविटी जितनी है, अगर ये ही मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े हैं, ये शो करते हैं कि मेरा आगे बढ़ना कहीं रुक गया है, इसीलिए ये निगेटिविटी आ गई है। तो जैसे कोई निगेटिविटी, नकारात्मकता जीवन में दिखे, अपने जीवन में खुद ही अपना जज बन करके उस नकारात्मकता को तुरंत हटा दें। तो बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमेशा फ्रेश रहे। और जल के कई संस्कार होते हैं, एक शीतलता है बताया, ओरिजिनल संस्कार शीतलता है, जल को अग्नि पर रख दो, अग्नि का रूप धारण कर लेगा, यानी गर्म हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा। और लेकिन अगर उसे ओरिजिनल स्वरूप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अग्नि से उतार करके दूर रख दो, अपने आप ही समय के प्रभाव में वो ओरिजिनल उसमें आ जाए। ऐसे ही अगर कोई भी विकार के वशीभूत हम मानो पुराने संस्कारों के कारण हो गए, क्रोध आ गया सडनली, अहंकार आ गया, तो उसमें क्या करना है, उस परिस्थिति से अपने को हम डिटैच कर लें, उस अग्नि वाले वातावरण से, क्रोध की परिस्थिति से, कोई जो विकारों ने जिस चीज को पैदा किया है, हम डिटैच, अलग होके चले जाएं थोड़े समय में उस वातावरण का प्रभाव। लेकिन हम क्या है, एक ने एक कही, हम दो बात कहते हैं, फिर उसने दो कही, हम चार बात कहते हैं, लाइक दैट वो बात बढ़ती चली जाती है। तुरंत ही जहां पर भी देखें कि कोई अगर संस्कारों का टकराव हो रहा है, तुरंत हाँ जो दादी जी कहा करते थे क्या, हाँ संबंधों में मधुरता कब आएगी, हार माने, बहुत ठीक बोला, हार माने, हार मान के डिटैच कर लेंगे, हमने एक बार हार मानी वो सदा के लिए दूसरा वाला वो हार मान, ऐसी आप सोचना जल के और क्या क्या गुण है। यहां तो मैं हर तत्व का एक दो गुण का वर्णन करूंगा, तो उससे क्या होगा, जल की जब परिस्थिति आएगी, सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, कोई भी आया, तो पहले ही अगर जल की तरफ से हमें ये सिग्नल आएगा, क्लियर एंड क्लीन माइंड जो बाबा कहता है, और बस तुरंत ही हमें टचिंग होगी और हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी हो। ऐसे दूसरा तत्व तो पृथ्वी, भूचाल के कारण बहुत मृत्यु का ये कारण बन सकता है। बाबा ने बताया बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरते हैं, अगर भूचाल के कारण हम भी मर गए, अब बैठे हुए हैं, छत गिरी, लोहे के गर्डर गिरे, हाथ पैर टूटे, हाहाकार मचा है, अगर हमारा भी उसके कारण ही शरीर छूटा तो क्या ड्यूटी रही। हम ब्रह्मा के वश, ब्राह्मण शिव बाबा के वश, भगवान को हमने पाया, भगवान तो सिग्नल देता है लेकिन हम उस सिग्नल को कैच करने की स्थिति में है या नहीं, वो हमारे क्लीन और क्लियर माइंड पर, विचारधारा पर होगा। तो उससे क्या होगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, सहन शक्ति, और पृथ्वी दाता है, पृथ्वी देती है हमेशा, लेने की इच्छा नहीं रखती। देखो पृथ्वी से हमें अनाज मिलता है, फल फूल सब्जी पानी, वहीं से पेट्रोल डीजल, सब कुछ पृथ्वी देती है, दाता है। ऐसी अगर हमने दातापन का गुण धारण कर लिया, इसमें स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन हरेक के साथ कोई आता है, सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना, सहयोग, जो व्यक्ति की इच्छा है, इन चीजों में तो कोई पैसा खर्च होता नहीं, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए इन चीजों का अगर हम दान देते रहे तो क्या है, हमने पृथ्वी का दातापन का गुण धारण कर लिया। तो पृथ्वी में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, बिल्डिंग गिरेंगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, अर्थक्वेक का तो सबने देखा ही, अनुभव किया है, भले हमारे डायरेक्ट ना हो लेकिन न्यूज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अर्थक्वेक आता है, कैसे सारी बिल्डिंगें गिरती है, कैसे हजारों लोग मर जाते हैं। तो अगर हमने ये दातापन का गुण धारण करा होगा, दूसरा पृथ्वी का बताया जैसे सहनशीलता का गुण है वो धारण किया होगा, तीसरा धीरे धीरे हम ना, जैसे ब्रह्मा बाबा भी धीरे धीरे गुप्त होता गया, बीज होता है, बीज नीचे अंदर बोते हैं, बीज की जड़ें अंधेरे की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वृक्ष जो है पौधा वो प्रकाश की तरफ बढ़ता है। तो हम धीरे 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 इतना अंतर्मुखी, इतना गंभीर, इतना बस समेटते जाएं अपने को अंदर, जो बाबा कहते हैं स्थूल रीति जैसे अंधकार बोलना जाता है ना, बस उधर बढ़ते रहे मैं और मेरा बाबा, और जो हमारी रचना है उसको सहयोग दे के आगे बढ़ाते रहे, उनको हिम्मत उमंग उल्लास, वो पौधा जो हमारा बोया हुआ है, जिनके हम बीज रूप हैं, वो ऊपर प्रकाश उन्नति की तरफ आगे बढ़ते रहे, किसी की उन्नति को देख के हमारे मन में ईर्ष्या और नीचे दिखाने की भावना ऐसा न हो, वो भले प्रकाश की तरफ बढ़े। तो उससे क्या होगा, जड़ तो हम ही है ना, जड़ जितनी मजबूत होगी उतना वृक्ष भी मजबूत होगा, इसीलिए हम अपने को धीरे धीरे गुप्त करते जाए। जो दादियां कहती हैं, देखो आप रीढ़ की हड्डी बनो, अब शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं दिखती, आंख नाक कान ये सब दिखते हैं, लेकिन पूरे शरीर का आधार है रीढ़ की हड्डी, वो गुप्त है, उसके आधार पर पूरा शरीर है। ऐसे ही धरती की तरह अगर हमने ये धरती के सहनशीलता का गुण, दातापन का गुण, धीरे 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 हम गुप्त रहने का, वो दूसरों को बढ़ते रहने में खुशी का अनुभव करने का गुण, ये सब जितना धारण करते जाएंगे, इसका मतलब धरती के हमने गुण धारण कर लिए, धरती को हमने पृथ्वी को मित्र बना लिया, तो वो मित्र जब भी धरती में अर्थक्वेक आने वाला, हम लोगों को भी इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया था एमटेक में कि मनुष्य कभी भी नहीं जान सकता कि कब अर्थक्वेक आने वाला है भूचाल, लेकिन पृथ्वी के अंदर रहने वाले कुछ जीव ऐसे हैं जो सर्प है, छिपकली है, जो अंदर है, जितने ऐसे हैं वो चूंकि दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ उनका तादम्य है, उन्हें आभास हो जाता है तुरंत, वो अपने दिल से कुछ मिनट पहले ही दिल से बाहर निकल के बाहर भाग जाते हैं। तो ऐसा हमें अपने को ये धीरे धीरे ये अनुभव करते जाना है, प्रकृति के साथ, बाहर की नेचर के साथ हमारी ऐसी मेंटल एडजस्टमेंट हो, बाहर की नेचर हमारी इंटरनल नेचर दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करें। तो इससे क्या होगा कि पहले से ही हमें आभास हो जाएगा अब ये है, और हमें सोचना नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिकली। कई जगह का अनुभव है, यहां पर हम लोग सुना करते थे लेटर लाटूर में हुआ था अर्थक्वेक, कचभुज में हुआ, कई जगह कैसे लास्ट मोमेंट पर भी बस बाबा ने टच किया बहनों को और उन्होंने सोचा नहीं ज्यादा। ये तो लंबे लंबे बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव उदाहरण हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कैलिफोर्निया का बता रहा हूं। कुछ वर्ष पहले वहां अर्थक्वेक आया, एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना बड़ा रिट्रीट हाउस बनाया हुआ था, बहुत जमीन थी, अर्थक्वेक जब आया तो चारों तरफ की सारी बिल्डिंग वगैरह सब नष्ट हो गई, लेकिन उनके मकान में कांच में भी क्रैक नहीं आया। तो मीडिया वाले उनके पास आए, टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो, कि भाई आपने किस मटेरियल का बनाया है? तो उन्होंने कहा कि मटेरियल तो मेरा भी वही है जो सब बनाते हैं, लेकिन मैं रोज धरती माता के साथ वार्तालाप करता हूं, कम्युनिकेशन करता हूं। वो कोई बीके नहीं थे, इंडियन भी नहीं है, अमेरिकन प्रोफेसर की बात है, बहुत बड़ा इसका सारा का सारा टीवी में और उसमें नेट पर भी इसका अनुभव आया था। और मैं वार्तालाप, है धरती माता, आप माँ हो, हम आपके बच्चे हैं, मैं भी आपको कष्ट नहीं दूंगा, माँ तो कैसे बच्चों को कष्ट दे सकती है, और आइए हम मिल करके इस धरती को स्वर्ग बनाएं, और हमें, मैं आपकी तरह आपके गुण धारण करने का प्रयास करता हूँ, और इस प्रकार से वार्तालाप पॉजिटिव। भारतीय संस्कृति में तो हमारे इन तत्वों को देवता माना गया है, उनसे हमारा वार्तालाप सदा जारी रहे, हर तत्व के साथ, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती माता आदि आदि। तो ये तो धरती के अगर हमने ये गुण धारण किए होंगे तो जितना भी अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी होगा, लेकिन समय से पहले हमें बाबा टच करा देगा, हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और इस प्रकार से मक्खन से बाल की तरह निकल आएंगे। बाबा ने कहा है, बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए, बस प्रोवाइडेड बच्चों को अपनी बुद्धि को, तन और मन को क्लीन और क्लियर रखना है, बस मन से, तन से भी कोई विकर्म ना हो ऐसा, और मन से के अंदर भी किसी के लिए कोई निगेटिव फीलिंग ना हो। तो हम अपनी प्रकृति को बाहर की प्रकृति के जो तत्व है उनके साथ मैच करते चले, ऐसे ही। हाँ, और वायु का क्या गुण होता है? हाँ, हल्कापन। देखो, धरती हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, दोनों के संस्कार विपरीत हैं, लेकिन दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, जहां जहां धरती है वहां वहां वायु भी है। तो विपरीत संस्कार होते हुए भी हम अपने परिवार वालों के साथ, संबंधियों, पड़ोसियों, जो हमारे प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं, हरेक के साथ साथ हम अलग अलग संस्कार होते भी हम सहानुभूति, प्रेम, आदर भाव, सत्कार उसके साथ रहें, तो क्या होगा? दोनों साथ साथ रहेंगे तो वायु का गुण है हल्का रहना, हर चीज को ऊपर उठाना। ऐसे ही मुझे हर परिस्थिति में हल्का रहना है, कभी भी भारी ना हो, पेपर आए, प्रॉब्लम आए, वो तो आएगी अंत समय तक, विघ्न भी आएंगे, माया आएंगी, क्या बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। हाँ, क्या फर्क है विघ्न में और माया में? कई बार विघ्न आते हैं, हम कह देते हैं अरे माया आ गई, माया को विघ्न बता देते हैं। तो माया और विघ्न में क्या फर्क है? विघ्न जो है वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है। विघ्न का स्थूल रूप होते हैं, मानो हम तैयार हुए सुबह, गुरुवार का दिन है, क्लास में जाना है, भोग में उधर बाहर निकले, हमारा कार है या स्कूटर है, देखा पंचर है, हवा नहीं, क्या करें? अब अगर कुछ कमजोरी होगी, कुछ भी होगा, बैठ जाएंगे, तब ये तो विघ्न आया स्थूल, लेकिन फिर जो संकल्प विकल्प होते हैं वो माया की तरफ खींच ले जाते हैं। अरे चलो घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं, चलो टीवी में आ रहा होगा देख लेते हैं, जैसा परिस्थिति उसके अनुरूप उस पर विजय प्राप्त करना, वो माया आएगी, कमजोरी आएगी, लेकिन उस कमजोरी का अपने ऊपर हम वार ना होने दें। एक इस तरह वायु की तरह हल्के रहेंगे हर परिस्थिति में, तो पॉजिटिव। चौथा तत्व तो कौन सा है? अग्नि। प्रकृति में अग्नि का कौन सा रूप है? सूर्य, सूर्य है ना अग्नि का स्वरूप। अग्नि का मुख्य गुण कौन सा होता है? जो भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो हमें बाबा ने कहा आपको वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग वो करना है। ज्वालामुखी योग से तात्पर्य है कि ऐसा हो योग तेजोमय कि जो कोई भी आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए। बाबा के साथ सामने हम, दादियों के साथ हमारा काफी अनुभव है, देखते थे बस बाबा के, मामा के सामने जब जाते थे, कई प्रश्न लेके जाते थे, ये पूछेंगे ऐसा, बस गए सामने जाके सब भूल जाता था, बस दिल होती थी उसके वही वाइब्रेशन को लेते रहे, अपने को एनर्जाइज करते रहे, शक्तिशाली बनाते रहे। रूप परिवर्तन तो बाबा ने कहा भी अंत समय में ऐसी परिस्थिति आएंगी, रोती हुई आत्मा आए, आपका ज्वालामुखी योग का अनुभव करके उसका रूप परिवर्तन हो जाए, वो हंसती हुई चली जाए, रोती हुई आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो ऐसा उसका रूप परिवर्तन तब हो सकेगा जब हमारा ज्वालामुखी योग जैसा होगा। और उसके लिए क्या है ज्वालामुखी? एक ये नाम कैसे पड़ा ज्वालामुखी? हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, उसका ज्वालामुखी, ज्वाला देवी का मंदिर बोलते हैं। तो वहां पर एक देवी की मूर्ति है, उसके मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है, आग, और वो कभी एक सेकंड को भी नहीं बुझती। और लोग बताते मेरे दादा, उनके दादा, परदादा के टाइम से ही अग्नि जलती चली आ रही है। हम तो ONGC में थे, तो वहां जब सर्वे हुआ पता चला गया कि भाई ये तो गैस निकल रही है, और किसी ने ऊपर मूर्ति वगैरह बना दी है। तो उसका कैसे लोगों की आस्था, वो हाँ आस्था चाहे हो लेकिन पॉजिटिव हो, अंधविश्वास ना हो बल्कि विश्वास हो, श्रद्धा। तो उनको बताया गया एक पाइपलाइन करके उसमें वाल्व लगा दिया गया, और वहीं सरपंच को बोला आप इस वाल्व को घुमाओ, उसने घुमाया और वो गैस बंद हो गई, ज्वाला बुझ गई। फिर उसे कहा आप उल्टी तरफ उसे घुमाओ, फिर ज्वाला गैस आनी शुरू हो गई और उसे जलाया गया, फिर वो जल गई। यानी इससे भाव क्या निकला? ज्वालामुखी योग तब होगा जब कंटिन्यूटी होगी, निरंतरता होगी जीवन में। होता क्या है कई बार अमृत वेले योग कर लिया या शाम को योग कर लिया, सारे दिन भर वो निरंतरता नहीं रहती है, तो वो ज्वालामुखी योग नहीं हो पाता। तो ज्वालामुखी के लिए आवश्यक है निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो क्या होगा? ऐसा योग अग्नि का प्रभाव होगा कि बस हम अंत समय में जो भी आत्माएं आएंगी, जो इच्छा लेकर के आएगी, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि बस वो आए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए। ये अग्नि का गुण होता है, तो सूर्य का ये संस्कार हमें धारण करना है अग्नि का। और अंतिम कौन सा तत्व है? आकाश। आकाश का क्या गुण है? विशालता, और वही बेहद का विशालता। तो जहाँ विशाल हृदय होगा ना, उसमें मुख्य गुण कौन सा होगा? क्षमा का। संसार में तो बहुत नेगेटिविटी होती है, जो भी महान आत्माओं की गई हैं, चाहे महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बहुत इतना क्षमा का भाव, किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं धरना, आकाश की तरह विशालता। तो अगर ऐसा हमने रूप धारण कर लिया, इतनी विशालता हो कि किसी का अवगुण देखते हुए भी हमारे चित्त पर न रहे, नहीं तो जैसे ही वो मनुष्य दिखता है तुरंत उसका अवगुण ध्यान में आ जाता है और फिर हम उसकी नेगेटिविटी की ओर हमारी बुद्धि चली जाती है। तो आकाश का अगर हमने ये विशालता का गुण धारण किया हुआ होगा तो क्या होगा? आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, बम हो, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, रॉकेट, कुछ भी होंगे, आकाश मार्ग से आने वाले, वो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया, और आकाश की मित्रता यानी कि विशालता, हृदय की विशालता। तो इस रीति से अगर हमने ये एक एक तत्व का, मैंने तो जस्ट टच किया है, आप सोचना उन तत्वों के और क्या विशाल गुण है, उनको हम धीरे धीरे अपनाते जाएंगे तो क्या होगा, इन तत्वों से हमारी मित्रता, और ये अंत समय बंधे हुए हैं हमें चेतावनी राइट टाइम पर देने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए, जो बाबा ने बताया है। अब ब्रह्मा बाबा में भी यही देखा कि जब बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, बिल्कुल शरीर की ऐसा जो बताया आपको, तो हम भी अंत समय में ऐसा हो कि बस ये तत्वों पर हमारा पूरा कंट्रोल हो, अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ के जाएं, और वो तभी होगा जब इन तत्वों के साथ हमने मित्रता, ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। तो आइए हम सब लोग मिल करके दो मिनट, और इसमें हमारा उदाहरण कौन है? दादी जानकी जी। दादी जानकी जी ना, सन 1999 31 दिसंबर की बात है, दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, लोटस में थे दादी, और यहाँ बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में, तो बाबा को बताया गया, बाबा दादी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, और क्या? तो बाबा ने सहज भाव से कहा, नहीं बच्चे कोई नहीं, वो प्रकृति उसका अंत तक साथ देगी, वो प्रकृति जीत आत्मा है। बस देखो 1999 दिसंबर 31, अभी 17 साल हो गए, और देखो दादी जी किस प्रकार से, आज भी सुना था थोड़े दिन पहले, लेटर आया था, जर्मनी में है, लंदन गए थे, जर्मनी और सेवा कर रहे हैं। तो ये प्रकृति, ये तन भी अंत तक साथ दे, इसमें यही है कि हम रोज इसको कुछ मिनट, 5 मिनट भी, 5 तत्वों को एक एक मिनट के हिसाब से भी योगदान करें। बस किसी ऐसी जगह पर जाके जहाँ ये 5 तत्व विजिबल हो, उनको जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, उनको योगदान करें, अपने गुणों को उनके साथ मैच करें, और ये कहें कि आओ हम दोनों हाथ मिला करके इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई जी, हम सभी को बहुत सुंदर प्रकृति पर विजय कैसे पानी और प्रकृति के साथ मित्रता कैसे बनाने, इस पर बहुत अच्छी तरह से समझ भी और उससे हम सब धारण करेंगे।
हुआ है ये अपना संसार, प्यार करे। सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये,
जल थल तेज पवन गगन ये, मिला है दो सुहाग।
प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार।
प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार।
प्यार करे सम्मान करे भरपूर।